ओम शांति, ओम शांति। दुनिया में हर एक मनुष्य अगर कहीं चिल्लाता है तो बड़ी बात नहीं कहेंगे। हर एक मनुष्य शांति चाहता है और चिल्लाता है, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। पर शांति की जब परिभाषा दी जाती है तो क्या कहते हैं, शांति क्या है? ये मन की स्थिति है। आप मन में जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर आप शांति के बारे में सोचेंगे तो शांति अनुभव होगी। अगर सोच ही हमारी अशांति की है तो अवश्य अशांति होगी। तो सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर है। तो बाबा भी हम बच्चों को हमारी सोच बदलना सिखाते हैं। शांति कैसे मिलेगी तो बाबा क्या सोच देते हैं, बच्चे शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, स्वधर्म में टिक जाओ तो तुम्हारे पास शांति है। स्वधर्म में टिक जाओ माना अंदर जाओ, खुद को पहचानो। फिर दूसरा बाबा कहते हैं मन को घर में ले जाओ, घर में तो शांति शांति है। जैसे कई बार मां बाबा कहते हैं ना, कभी मन ऐसे उलझन में हो तो उस समय मधुबन पहुंच जाओ और महसूस करो मधुबन में मुझे कितना सुंदर अनुभव हुआ। तो वो अनुभव याद करो तो जो उलझन है वो मिट जाएगी। तो जो सोचेंगे वही अनुभव होगा। तो चले जाओ बाबा के पास परम धाम में और महसूस करो उस शांति धाम को। फिर तीसरा भी स्थान है जहां शांति अनुभव कर सकते हैं, एक तो खुद के भीतर, दूसरा परम धाम में मन को ले जाओ और तीसरा स्वर्ग में ले जाओ। स्वर्ग में भी मन में कितनी शांति है, हर आत्मा में शांति है। तो आज बाबा ने ये कॉन्ट्रास्ट भी किया है। कलयुग में चिल्लाओ नहीं शांति चाहिए, शांति चाहिए, यहां तो शांति है ही नहीं। ये सोचना भी गलत है कि शांति चाहिए यहां इस कलयुगी दुनिया में, कहीं भी नहीं है, जंगलों में भी नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी मन की स्थिति है। तो कितना कॉन्ट्रास्ट बस बाबा ने आज बताया, यहां शांति नहीं है, स्वर्ग चले जाओ, परमधाम चले जाओ, अपने स्वधर्म में टिक जाओ, पर यहां ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, तो इस दुनिया में क्या है और सतयुगी दुनिया में क्या होगा, यहां पर हम क्या हैं और पहले क्या थे, बस वो अगर सोचेंगे तो इस कलयुगी दुनिया के दुख दर्द भूल जाएंगे, है ना। कल भी एक माता आई थी, कहती है बहन जी बाबा मुझे ही क्यों परीक्षा दे रहे हैं, मुझे ही क्यों परीक्षाएं दे रहे हैं। तो हमने कहा बाबा क्यों परीक्षा देगा, ये तो आपका कर्मों का हिसाब किताब है, बाबा क्यों परीक्षा लेगा। तो बाबा नहीं लेता परीक्षा, क्योंकि माया क्यों आती है। तो उस दिन तो बाबा ने कहा माया की क्या चीज है, माया तो कुछ है ही नहीं। तो माया या बाबा परीक्षा लेता है आए, तो बाबा कहते ये सब नहीं कहो, ये दुनिया ही ऐसी है, समझ लो इस दुनिया में है ही दुख। यहां तो सुख मिल ही नहीं सकता, शांति मिल ही नहीं सकती, इसीलिए इस दुनिया से कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। लेकिन हाँ, बाबा हमें उस घर में और नई दुनिया में ले जाते हैं। पर यहां रहकर भी क्या सोचो वो बाबा जरूर सिखाते, जाना तो कहीं नहीं है। तो आज बाबा ने हर वाक्य में यहां क्या है और वहां सतयुग में क्या होगा, यहां क्या है और सतयुग में क्या था, हर सेंटेंस में बाबा ने ये कॉन्ट्रास्ट बताया, इसीलिए यहाँ का तो सोचो ही नहीं, ये है ही कलयुगी दुनिया, यहाँ तो कोई उम्मीद ही भी रखना नहीं है। तो अभी बाबा हम बच्चों को ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहाँ कोई दुख अशांति नहीं होगी। तो उसका गीत क्या होगा, गीत भी सुनते हैं ना। तो आज का जो गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, चित चैन जहाँ मिले तो वहीं ले चल। तो बाबा कहते मैं इसीलिए तो आया हूँ, इस पाप की दुनिया से तुमको छुड़ाने, उस चित चैन की दुनिया में ले जाने, बस वही याद करो और इस पाप की दुनिया को भूल जाओ। कई तो ये कहते कि हमने कोई पाप तो किया नहीं है इस जन्म में, तो हम क्यों दुख मिलता है। तो पता भी नहीं है कि दुनिया में हम क्या क्या पाप करते। आज बाबा ने कहा पाप कर रहे यही पता नहीं है, और कहते मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है। तो बाबा पाप पुण्य का भी अंतर बताते हैं, उसकी भी परिभाषा देते हैं, पाप किसको कहेंगे, पुण्य किसको कहेंगे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 15/4/2026 है। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांति है। तो एक तो अपने स्वधर्म में टिक जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है। सच्ची शांति तो शांति धाम में मिल सकती है। दूसरा, वहां चले जाओ शांति धाम में मन से, तो शांति का अनुभव होगा। ये बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है। तुम्हारा स्वधर्म शांत है, सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है, ये बात सबको सुनानी है और स्वधर्म में रहना है। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो। केवल अभी ही बाबा हमको वो नॉलेज देते हैं, हाँ वो हम अभी पढ़ रहे हैं। कौन सी नॉलेज? उत्तर है बाबा ने कहा आज पाप और पुण्य की नॉलेज। मनुष्य को पता ही नहीं कि पाप क्या है पुण्य क्या है, सिर्फ ये कहते रहते मैंने पाप तो कुछ किया नहीं। परंतु छोटे छोटे पाप भी कैसे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो पाप और पुण्य की नॉलेज, आज बाबा ने कौन सा पाप बताया होगा। और हम समझते थे ये तो बड़ा पुण्य है, पर है वो पाप। कौन सा ऐसा पाप होगा जो है पाप लेकिन हम उसको भक्ति मार्ग में पुण्य समझते थे। तो बाबा कहते हैं भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं, परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं, ये सर्वव्यापी कहना ये भी जैसे भगवान को गाली देना है, और ये गाली भी एक पाप बन जाती है। अब वो तो सभी देते होंगे ना, भगवान का है सर्वव्यापी है सब जगह है। तो भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाबा को भी जाना ड्रामा को भी जाना तो हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो, तुम जानते हो सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। तो गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जहां देवी देवताओं का राज्य था, और वो भारत आज पाप आत्माओं की दुनिया बन गया है। ये भारत सुख धाम था और कोई खंड नहीं था, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। ये है नर्क, भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहां से आए? सुख शांति चैन कहां से आए? इसीलिए इस दुनिया में उम्मीद रखना कि हमें सुख चैन शांति ये सब मिले, यहां बाबा कहते इस दुनिया में नहीं है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहां से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता है, कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है। केवल नर्क नहीं, रौरव नर्क। दुख धाम कहा जाता है, भारत ही सुख धाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, ये भारत की विशेषता थी, गृहस्थ धर्म पवित्र था। प्यूरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, और पवित्रता सुख शांति थी, और उसके साथ साथ संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं, ये है दुख धाम। भारत सुख धाम था, और जहां हम आत्माएं निवास करती है वो है शांति धाम। शांति वहां शांति धाम में मिल सकती है, हाँ, शांति शांति धाम में मिल सकती है। आत्मा शांत वहीं रह सकती है जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है, वो है आत्माओं का घर। वहां जब रहते हैं तब आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती, शांति धाम तो वही है। एक सतयुग में सुख भी था शांति भी थी, इसीलिए या तो भीतर जाओ तुम्हारा स्वधर्म शांति, परम धाम में शांति, सतयुग में शांति। तो सतयुग में सुख भी है शांति भी है, यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती। इसलिए कलयुगी दुनिया में ये उम्मीद ही नहीं रखो कि यहाँ शांति होगी। शांति धाम में मिल सकती है, सुख धाम में भी कर्म होता है। वहां भले शांति है लेकिन कर्म है, शांति धाम में तो कर्म भी नहीं है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो, इसीलिए उम्मीद ही छोड़ दो तो दुख अशांति है, बस मन को बदल दो, बस और कुछ नहीं, क्योंकि ये मन की स्थिति है। तो बाबा कहते हैं इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो, ये है ही भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं परंतु उस बाप को कोई भी जानते नहीं, इसीलिए क्या बन गए हैं? बाबा को नहीं जानते, पिता को नहीं जानते, इसलिए निधन के बन गए हैं। धनी धोनी कोई है ही नहीं, उनके ऊपर कोई है ही नहीं जो उनको कुछ कहे भी। ऑर्फन होने कारण निधन के अनाथ जैसे हो गए, तो अनाथ होने कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख अशांति, कितनी मारामारी, ये है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं, रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख भी है तो शांति भी है, दोनों है। आपस में वहां कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे, वहां पांच विकार होते ही नहीं। हाँ बाबा, इस समय एक बार ना मुरली बाबा की चल रही थी और चिड़ियाएं आपस में लड़ रही थी, आपस में आवाज का चू 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 इतना तो लड़ रही थी, तो बाबा ने कहा देखो ये चिड़ियाएं भी लड़ रही है कलयुग की दुनिया में, उनमें भी शांति नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहां तो कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे, वहां पांच विकार होता ही नहीं, यहां पांच विकार है। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम और क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे, वहां सब देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी है, देवताएं थे ही देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख नहीं दे सकते हैं, कभी किसी को सुख नहीं दे सकते हैं जो देह अभिमानी है। एक दो को दुख ही देते हैं, ऐसे मत समझो, क्या नहीं समझो कि कोई लखपति है करोड़पति है पदमपति है तो वो सुखी है, नहीं, वो तो सब है दुनिया में जो करोड़ पदम ये सब बाबा कहते क्या है, ये माया का भबका है, माया का भबका, अभी गया की गया, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। बच्चों को खुशी है ना कि इस लड़ाई के बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, आधा कल्प के बाद फिर नर्क के द्वार खुलने हैं, ये भी पता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ऐसे नहीं है कि अभी स्वर्ग के द्वार खुलने हैं फिर आधा कल्प के बाद नर्क के द्वार खुलेंगे, ये शास्त्रों में बातें नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा, बहुत भक्ति करो तो भक्ति का फल भगवान मिलेगा। और बाबा क्या कहते हैं, और बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हो तब मुझे आना पड़ता है, मैं तब आता हूँ जब भक्ति करते 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 बिल्कुल नीचे आ पड़ते हो। स्वर्ग की स्थापना करने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने मैं आता हूँ। भारत जो स्वर्ग था वो नर्क कैसे बना, कैसे बना भाई नर्क, किसने बनाया नर्क, किसने बनाया, रावण ने। जोर से कहना चाहिए, उत्तर तो सब जानते, रावण ने, रावण ने नर्क बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला था कितने समय के लिए, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का राज्य था, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, द्वापर में आया फिर कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई, इसलिए सब पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती है, पतित है तो पतित मनुष्य को इस पतित दुनिया में सुख शांति मिल ही नहीं सकती है। कितना दुख उठाते हैं, आज पैसा चोरी हो गया, कल दिवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पानी का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला कौन है, केवल एक बाप है बस। सदा सुखी सदा दुखी बनाने वाला एक रावण है, वो भी एक, वो भी एक। तो सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है और सदा दुखी बनाने वाला एक रावण है, ये बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, वहां कभी कोई नहीं रोएगा, छोटे बच्चे भी नहीं रोएंगे, है ना। यहाँ तो छोटे बच्चे तो कितना रोते, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। अब जब तक पांच विकारों का दान न दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। ये सच्ची बात, जब तक पांच विकारों का दान न दे तब तक ग्रहण छूट नहीं सकता। इसलिए जब भी ग्रहण लगता है तब क्या कहते हैं, उस समय वहां गरीब लोग भिखारी लोग रास्ते में मांगने आते हैं, देदान छूटे ग्रहण, देदान छूटे ग्रहण। तो लोग अपने घरों में कुछ न कुछ रखते हैं, पुराने कपड़े पुराने बर्तन वो सब दान में दे देते हैं, भाई ग्रहण छूटे। तो बाबा कहते हैं ये पांच विकारों का ग्रहण है, तो ये जब तक पांच विकारों का दान न दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना देदान तो छूटे ग्रहण, इस समय सारे भारत को पांच विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये पांच विकार का दान न दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। और ग्रहण लगता ही तब है जब जब वो पूर्ण चंद्रमा होता है ना, तभी तो ग्रहण लगता है ना। ऐसे अधूरा चंद्रमा में ग्रहण नहीं लगता, जब पूरा चंद्रमा हो तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो बाबा कहते हैं पांच विकारों का दान जब तक न दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन नहीं सके। बाप सर्व का सदगति दाता है, कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी तो अर्थ नहीं समझते। गुरु बिगर गति नहीं का मतलब क्या है, गुरु तो चलो गो तो दे ही नहीं सकता, पर गति किसको कहते हैं वो भी समझते नहीं है। मनुष्य की गति सदगति माना, गति माना मुक्ति, सदगति माना जीवन मुक्ति। तो ये मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति और जीवन मुक्ति। सो तो बाप ही दे सकते हैं, क्योंकि घर में भी तो बाप ही ले जाएंगे, नई दुनिया में भी बाप ही भेजेंगे, तो मनुष्य कैसे गति सदगति दे सकता है। तो इसलिए मनुष्य कोई गति गुरु बिना गति नहीं, ये नहीं, सच्ची बात नहीं है। सदगुरु बिना गति सदगति नहीं, तो सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सब की सदगति होनी है, कोई गति में जाएंगे कोई सदगति में जाएंगे, सबकी गति सदगति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, फिर पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं, न्यू तो है नहीं, भले कितना भी कोई सोच ले सब नया, कितना नया बन गया है, बहुत कुछ नया बन गया है, रोड इतने अच्छे बन गए हैं, सब बहुत अच्छा बन गया, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि पुरानी चीज कोई नई बन गई, पुरानी तो पुरानी है। तो कहते न्यू दिल्ली पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं, कुछ भी नया नहीं है, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, जब नई दिल्ली थी तो जमुना का कंठा था और दिल्ली क्या थी, परिस्थान थी, सतयुग था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भूल गए हैं, नई दुनिया में नए भारत में नई दिल्ली में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भारतवासी भूल गए हैं। नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था, और कोई खड नहीं था उस समय, ये कोई भी नहीं जानते। अब गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं है स्कूलों में, ये इस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती है। जानते हैं कि ये तो अधूरी हिस्ट्री है, अधूरी हिस्ट्री है। हमको तो द्वापर युग से ही पता है, 2500 वर्ष से ही इतिहास का पता, उसके पहले का तो इतिहास पता ही नहीं। कहते हैं बहुत काल पहले, बहुत समय पहले, परंतु इतिहास सच्चा क्या है वो पता ही नहीं। जानते हैं कि ये तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बोधि आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का तो कोई को पता ही नहीं है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हाँ, कई आते हैं ना, एक स्टूडेंट आया था, कहता है बहन जी अगर ये ज्ञान ही सही है तो स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। अरे भाई उनको पता ही नहीं है ये ज्ञान, ये तो भगवान ही आकर के देते, तो वहाँ कैसे पढ़ाया जाएगा। अभी बाबा के बच्चे जाते हैं स्कूलों कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में, और कैसे ये वैल्यू एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत कैसे यूनिवर्सिटीज ने MOU किया है ब्रह्मा कुमारी के साथ इस एजुकेशन के लिए, बाकी उस पढ़ाई में तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। हाँ, कई आते हैं कहते हैं बहन जी हमको ऑफर मिल रही है फलाने देश में, तुमको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, बहुत प्रलोभन दे रहे, मैं जाऊं। हम कहते हैं नहीं जाओ, भारत में रहो। अभी भारत ही हमारा सबसे श्रेष्ठ बनना है, बाकी तो सब उतरती कलाएं, सबका तो अभी अंत होगा, इसलिए भारत से बाहर नहीं जाओ। जो भारत से बाहर गए वो भी सब वापस आना चाहते हैं, इसीलिए भारत में रहो। हाँ, तो कई पूछते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाप कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। ये ड्रामा बना हुआ है, जब एकदम पाप आत्मा बन जाए तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। ये कोई भी ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। नॉलेज फुल बाप ही है, वो ही आकर के पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति नहीं दे सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होता था। बाबा हर सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, यहाँ क्या है और वहाँ क्या था। कोई भी बीमार रोगी नहीं होता था वहाँ, तो यहाँ तो देखो सब रोगी है। हाँ, सब रोगी है। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। ये खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान है, वो कौन सा ज्ञान कहेंगे, शास्त्रों का फिलॉसॉफी, दर्शन शास्त्र कहते हैं ना, तो वो है फिलॉसॉफी, भक्ति मार्ग, वो कोई सदगति मार्ग नहीं है। ये कोई शास्त्रों की फिलॉसॉफी नहीं है। बाबा हमको कोई शास्त्रों की फिलॉसॉफी नहीं सिखाते हैं, बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। यहाँ है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, वो है आत्माओं का बाप। बाप बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसीलिए नॉलेज फुल हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं ही जानता हूँ। तुम बच्चों को ये नॉलेज मैं देकर क्या हो जाता है, यहाँ क्या होता है, तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक मैं ही बनाता हूँ, फिर तो मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर क्या हो जाता है इस नॉलेज का, क्या हो जाता है इस नॉलेज का, एक ही बार अभी मिलती है नॉलेज, फिर ये नॉलेज गुम हो जाती है, ये गुम हो जाती है नॉलेज, फिर ये गुम हो जाती है, फिर सत्युग त्रेता में इस नॉलेज की दरकारी नहीं रहती है। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, एक तो अभी ही मिलती है, परमात्मा के द्वारा ही मिलती है, और केवल अभी फिर प्रायलोक हो जाएगा, और बाबा कहते तुम ब्राह्मणों को ही अभी मिलती है नॉलेज। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में ये नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से ये नॉलेज आ नहीं सके, कैसे आ सकती है कहेंगे परंपरा से, परंतु परंपरा से तो आ ही नहीं सकती, देवताओं में तो ये ज्ञान था ही नहीं। ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार ज्ञान मिलता है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पा लेते हो, तुम्हारे पास बहुत आते हैं, अब वही मन की शांति की बात, तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना ही भूल है, ये शब्द ही भूल है, गलत है बोलना कि मन की शांति कैसे मिले। मन बुद्धि तो आत्मा के ऑर्गन्स है, जैसे शरीर के ऑर्गन्स है, अब आंख का काम है देखना, अब ये आंखें ही नहीं होगी तो देखेंगे कैसे, तो मन की शांति का मतलब मन अमन हो जाए, एकदम शांत हो जाए, कुछ सोचे ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, तो मन का तो काम ही सोचना है। तो मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है, जैसे शरीर के ऑर्गन्स है ना, तो उनसे काम लेते हैं, आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही बनाते हैं, जो सत्युग त्रेता तक चलती है। ये पारस बुद्धि ज्ञान से बाबा जो हमारी बनाते हैं, बाबा कहते दो युग तक ये पारस बुद्धि चलती है, सत्युग त्रेता तक ये पारस बुद्धि चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी, फिर क्या हुआ, पत्थर बुद्धि कैसे बन गई, पारस बना सोना समझो, पारस जिस लोहे को छुए वो सोना बन जाए, तो पारस बुद्धि बना सोना बुद्धि, फिर तुम पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कैसे बने भाई, तुम्हारी पारस बुद्धि थी, फिर उसमें खाद मिलती गई, सोने में खाद मिलती गई, अब फिर पारस बुद्धि कैसे बनोगे, फिर पारस बुद्धि बनना है तो फिर खाद को निकालना पड़े, और कैसे निकलेगी खाद, जब योग अग्नि में पकेंगे, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो, हाँ कैसे बने, बाप कहते हैं उसके लिए क्या करो, मुझे याद करो, बस इस योग अग्नि से ही तुम पारस बुद्धि बन सकते हो, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, तो उनको क्या बताओ, आते हैं ना सब यही कहते मन की शांति कैसे मिले, तो बाबा कहते उनको क्या बताओ, तो उनको क्या बताओ, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती है, इस कलयुग की दुनिया में शांति हो ही नहीं सकती है, ये है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है, और जहाँ विकार है वहाँ तो शांति हो ही नहीं सकती है, जहाँ पवित्रता है वहीं शांति हो सकती है, तो है ही विकारों की दुनिया, तो यहाँ कहाँ शांति मिलेगी। ये तो बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती, ये है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है, ये तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है, शांति कैसे मिल सकती है, ये बेहद के बाप से वर्षे के रूप में मिलती है। फिर रावण का साथ मिलने से तुम पतित बन जाते हो, फिर बाप द्वारा पावन बनने में कितना समय लगता है। रावण के संग से पतित बन गई, फिर पतित से पावन बनने में, बाबा के संग से पावन बनने में कितना समय लगता है। बाबा कहते एक सेकेंड, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये कहा आत्मा पावन बनती है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने, बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और जीवन बंद का श्राप कौन देता है, रावण। जीवन मुक्ति का वर्षा बाप देते हैं और जीवन बंद का श्राप रावण देते हैं, इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है, दुख धाम में किसको सुख शांति मिल ना सके। इसलिए कोई कहते हैं ना मन की शांति मिले, हम कहते हैं वो उम्मीद ही छोड़ दो कि इस कलयुग की दुनिया में आपको मिलेगी, बस उसके लिए न्यारे हो जाओ। यही एक तरीका है, अंदर चले जाओ, बाबा के पास चले जाओ, मन से नई दुनिया में चले जाओ, बस तब शांति मिलेगी, दुनिया में उम्मीद मत रखो। तो बाबा कहते हैं तो ड्रामा को भी जानना है, दुख धाम में किसको सुख शांति मिल न सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है, शांति धाम आत्माओं का घर है। तो आत्मा कहती है, शांति अनुभव करना है तो आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांति है। ये शरीर बाजा नहीं बजाता हूँ, ये शरीर बाजा है ना, तो ये नहीं बजाता हूँ मैं, बोलता नहीं हूँ, बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ। परंतु फिर बाबा कहते कहाँ तक बैठे रहेंगे, चलो बैठ जाता हूँ, बस बाबा को याद करने तो शांति शांति है, पर वो भी कहाँ तक बैठ सकेंगे, कर्म तो करना है ना। बैठ जाता हूँ तो बस शांति शांति है, परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे, कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। ये ड्रामा है, हार जीत का खेल है, दुख सुख का खेल है, इसको खेल समझो तो दुखी नहीं होंगे। तो जब तक इसको ड्रामा में समझे मनुष्य तब तक दुखी रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास। अब दुखी दुखी है इस कलयुगी दुनिया में, चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, तो बाबा के बच्चे जो इतने धनवान है वो नहीं बनते, गरीब बच्चे ही बाबा के बच्चे बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास, यहाँ गरीबी आएंगे, साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यही है, साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यही है। उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं, साहूकारों के लिए स्वर्ग के सुख है ही नहीं। तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। देखो भगवान क्या करते हैं, गरीबों को साहूकार और साहूकारों को गरीब। यानी ऐसे नहीं कि बाबा कोई बनाते हैं, साहूकारी तो सब यहीं रह जाएगी, क्योंकि पुण्य का कर्म नहीं किया, दान पुण्य किया नहीं, किसको सुख दिया नहीं, केवल धन संग्रह ही किया, तो दुआएं तो कमाई नहीं, तो गया उसका सारा धन। और जो गरीब है वो दुआएं कमाते हैं, सेवा करते हैं, पाई पाई बाबा के यज्ञ में डालते हैं, तो वो तो साहूकार बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हों की तकदीर में स्वर्ग का सुख है ही नहीं, साहूकारों के तकदीर में। तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते, क्यों क्यों नहीं पा सकते इतना ऊंच पद, क्योंकि यहाँ उनको साहूकारों का नशा, साहूकारी का नशा है। हाँ मैं तो बहुत धनवान हूँ, मेरे पास क्या कमी है, क्या जरूरत है मुझे ज्ञान योग की, कोई जरूरत नहीं है, तो उसी का नशा है। हाँ हाँ बाबा कहते हैं प्रजा में आ जाएंगे, किस आधार पर प्रजा में आएंगे, कल भी बाबा ने बताया, आएंगे साहूकार लोग भी आएंगे, कहेंगे आप लोगों का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, महिमा गाएंगे, ज्ञान तो बहुत अच्छा है, आप लोग इतना ऊंचा ज्ञान देते हो, उतना ऊंची ऊंचा आप ले जाते हो, भारत को बहुत मदद करते हो, ये करते हो वो करते हो, बहुत कहते हैं। फिर खुद उनको को आप भी लो, नहीं हमारे पास तो फुर्सत नहीं। तो इसका मतलब वो ज्ञान की महिमा गात करते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, एग्जीबिशंस में आते हैं, मेलों में आते हैं, प्रोग्राम्स में आते हैं, बुलाते भी हैं, पर खुद नहीं लेते ज्ञान। तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा, वो सतयुग में आएंगे जरूर, लेकिन क्या बनेंगे, कल भी बाबा ने बताया क्या बनेंगे, प्रजा बनेंगे, हाँ राजा रानी तो नहीं बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं परंतु बाबा गरीब साहूकार बन जाते हैं, तो यहाँ साहूकारों को नशा है, हाँ प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, क्योंकि ज्ञान सुना तो सही ना, महिमा भी तो की ना, आप लोग बहुत ऊंचा काम कर रहे हो, ये भी कहा तो थोड़ा बहुत तो वो महिमा करने से भी थोड़ा पुण्य तो कमाया ना। तो बाबा कहते हैं परंतु बाबा कहते हैं स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद तो गरीब ही पाते हैं, गरीब साहूकार बन जाते हैं, उन्हें देह अभिमान है ना धनवान को कि हम तो धनवान हैं। परंतु बाबा कहते हैं जिनको बहुत नशा है अपने धन का, उनके लिए बाबा क्या कहते हैं, ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है, देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, इस समय सब देह अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। आत्मा क्या कहती है, हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है, घर जाना है। अभी कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम है, तो बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ, किस लिए आता हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है, अगर लेनी है जीवन मुक्ति वर्षा लेना है जीवन मुक्ति का तो पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। दूसरा धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। मोटे मोटे विकार तो चलो छूट गए, लेकिन विकारों के वंश का अंश भी न रहे, तो विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। बाबा कहते जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं, आई वेल माना है ना कुछ ऐसा धन वो अलग करके रख देते हैं, भाई समय पर काम आएगा, आई वेल माना कभी जरूरत पड़ेगी, पता नहीं कब पर पड़ेगी, तो वो अलग करके रख देते हैं। तो इसीलिए आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं, पुराने संस्कार रख लेते हुए कभी भी क्रोध करना पड़ा तो कर लेंगे ना, कभी भी कुछ अभिमान दिखाना पड़ा तो दिखा लेगी ना, तो आई वेल की रख देते हैं। नॉर्मल में नहीं है क्रोध, पर अचानक वो आ जाता है तो आई वेल में रखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर कर लेंगे। तो जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। जिन्होंने थोड़ा भी किनारे कर रखा तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है वो पुराने संस्कार। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। होता है ना कई भाई अब वॉट छिपाते हैं अपना सारा को सब कुछ छिपा लेते हैं लेकिन या जला डालते हैं वो सब सीसीटीवी को भी डिलीट कर देते, पर जरा सा कुछ अगर रह गया और वो नहीं डिलीट किया या नहीं खत्म किया तो उस टुकड़े से भी पता कर लेते हैं कि इसने क्या गलती की है। तो बाबा कहते हैं पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है, माया की कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। सीआईडी वाले होते हैं ना बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं ना, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसीलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। कौन सा है पुराना खजाना? पुराने संस्कार। पुराने खजाने की निशानी न हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। विशेषता तो हर एक में कोई न कोई है, पर उस विशेषता से उसका लगाव हो जाना तो बाबा कहते विशेष स्नेह है उस विशेषता से भी, ये भी लगाव है। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो के अंतर्गत, मधुरता ही महानता है, इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। मधुरता से मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं। सुना, बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं, इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो, आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। जो भी संपर्क में आए उससे मधुर बोल और शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा का बेहद परिवार है, बेहद के बाबा के बच्चे हैं, तो रोज रोज कोई न कोई का समाचार आता ही है शरीर छोड़ने का। तो अभी तो सवेरे से ये समाचार तो कईयों को मिल भी गया होगा, कईयों को नहीं भी मिला होगा कि हमारे अति प्रिय मधुबन निवासी सरदार अमर सिंह जी, सरदार जी है ना, मधुबन निवासी थे, भोजन खिलाते थे, परोसते थे, सबको परोसते थे। तो हमारे अमर सिंह भाई जी ने आज सवेरे 5:56 पर अपना भौतिक देह छोड़ बाप दादा की गोद ली। तो उन्होंने सुबह सुबह शरीर छोड़ा है, हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा। आपका स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से अस्वस्थ था, ग्लोबल अस्पताल में उपचाराधीन थे, हॉस्पिटल में ही थे कुछ समय से। अमर सिंह भाई पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से ज्ञान में थे। उन्होंने जलंधर पंजाब में ज्ञान प्राप्त किया। लौकिक घर उनका हिमाचल प्रदेश मंडी में है। 1993 में मधुबन में समर्पित हुए। तो पहले तो प्रेस डिपार्टमेंट, आयरन करने की डिपार्टमेंट, फिर डाइनिंग हॉल में सेवा दी। बहुत ही नम्रचित स्वभाव के धनी आदरणीय दैवी मूरत अमर सिंह भाई जी के पार्थिव देह को कल गुरुवार सवेरे 9:30 बजे पांडव भवन लाया जाएगा। चारों धाम की परिक्रमा कराने के बाद मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे। तो आज सवेरे तो उन्होंने शरीर छोड़ा है, ग्लोबल हॉस्पिटल में रखा है, और कल सुबह, कल भोग भी है तो भोग भी लगेगा, और फिर उनके बॉडी को यहाँ लाएंगे और चार धाम की यात्रा करा करके फिर शमशान घाट ले जाएंगे। अभी हम 3 मिनट उस आत्मा को शांति दान देंगे, योगदान देंगे।